हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्था। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वैकीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममारं प्रेम पुमर्थो महां। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर धरुणबिम फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे, वेदसांगपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయముధీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీం పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శివాసది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే గ్రంథరాజ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జై. పహలా స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ కో శాప్. హమే దేఖా మహారాజ్ పరీక్షిత్ నే కిస్ ప్రకార్ కలయుగ్ కో దండిత్ తథా పురస్కృత్ కియా ఔర్ ఇత్నీ కథా సునానే కే బాద్ మహారాజ్ సూత్ గోస్వామి నే రిషియో సే కహా కి యే జో భగవాన్ కే భక్తోం కీ కథా హోతీ హై వో సాక్షాత్ భగవాన్ కీ కథాఓం కో హీ ప్రకాశిత్ కర్నే వాలీ హోతీ హై. తో జో ఆప్నే ముజ్సే పూచా థా వో మేనే ఆప్కో బతా దియా ఔర్ ఉత్నా కహనే కే బాద్ రిషియో నే సూత్ గోస్వామి సే భూరి భూరి ప్రశంసా కీ ఔర్ ఉన్హే బహుత్ బహుత్ ఆశీర్వాద్ దేతే హువే ఉన్హే కహా సూత్ జీవ సమా సౌమ్య శాశ్వతీ విశదం యశః యస్తం శంససి కృష్ణస్య మర్త్యనానామమృతం నిహినః. కి ఆప్ బహుత్ బహుత్ సమయ తక్ జియో సూత్ జీవ సమా సౌమ్య ఆప్ అనేక వర్షో తక్ జియో శాశ్వతీ విశదం యశః బహుత్ హీ విషద్ ఆపకో యశ్ ప్రాప్త హో క్యూకి ఆప్నే యస్తం శంససి కృష్ణస్య కృష్ణ కీ లీలాఓం కో బడే హీ సుందర్ ఢంగ్ సే హమే బతాయా హై ఔర్ హమ్ జైసే మృత్యుం కే లియే మృత్యమానాం అమృతం హీ నః. యే తో సాక్షాత్ అమృత హై. యే ఆప్కీ బడీ కృపా హై కి ఆప్నే కృష్ణ కథా రూపీ అమృత కా పాన్ కరాయా హై హమే. క్యూకి హమే ఇన్ కథాఓం కే అమృత కా कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर जमा हुए थे सकाम कर्म करने के लिए. कर्मण्यस्मिन् नश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान् आपाययति गोविन्द पाद पद्मासवम मधु. कर्मण्यस्मिन् ननाश्वासे, कोई निश्चित नहीं था, कोई आश्वासन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि ये हमारा कर्म जो हम करने के लिए यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आए थे वो संपन्न होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे एकत्रित होने के बाद भी कभी भाव में कमी तो कभी इस ये जो कार्य कर रहे हैं उसकी सामग्री में कभी कुछ, मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं था कि हम इस कार्य को संपन्न कर पाते, क्योंकि 1000 साल तक चलने वाला ये यज्ञ था और अभी से हमारा हाल क्या हो गया था, धूम धूम्रात्मना भवान, धुएं के कारण हमारा हाल बेहाल हो गया था. हम अब मजीद इस कार्य को कर नहीं पा रहे थे और हम बहुत ही कष्ट हमें बहुत कष्ट हो रहा था. लेकिन जैसे ही आप आए, आपाययति गोविंद, और आप आके हमें संतुष्ट कर दिया, आपने हमें अत्यंत प्रसन्न कर दिया. क्या करके, गोविंद यानी भगवान श्री पाद पद्मा सवम मधु, भगवान के चरण कमलों के मधु को हमें टेस्ट करवाया, हमें उस मधु का आस्वादन करा के आपने हमें आनंदित कर दिया. और ये जो कथा आप हमें बता रहे हो, जब हमें एक शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान के विषय में भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तो उसका उसकी तुलना करके बताते हैं. वे कहते हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशय तुलयानम, यानी कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसकी, लवेना भी एक छोटा सा क्षण भी अगर आपको भगवत संगी संगस्य भगवान के भक्तों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती किससे, न स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना तो स्वर्ग से और ना ही मुक्ति से। भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है तो उसका उसकी तुलना ना हम स्वर्ग से कर सकते हैं, ना मुक्ति से कर, पुनर्भव मुक्ति से भी नहीं कर सकते। मर्त्यानाम की मोताशय, तो फिर सांसारिक आशीर्वाद के विषय में क्या कहा जाए, जो संसार के इतनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति के साथ उनका क्या कंपेयर है। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम भक्तों के संग को छोड़ने के लिए, कथा को छोड़ने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन संसार के छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं चलो ठीक है आज हम भगवत कथा नहीं श्रवण करते। लेकिन वास्तव में भक्तों, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने के का अधिकार प्राप्त कर किया है हमने। इसीलिए आगे ऋषिगण कहते हैं संसार में कभी भी कोई भगवान की कथाओं को श्रवण करके तृप्त नहीं हो सकता। वे कहते हैं को नाम तृप्येत रसवेत कथायां महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मो योगीश्वराये भवपात्म मुख्या। कौन आम तृप्येत, ऐसा कौन है जो तृप्त हो सकता है विशेष रूप से रसवित कथायां भगवान की कथाओं के अमृत से, महत्तम एकांत परायणस्य समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है वो, नान्तम गुण गुणानाम गुणस्य जगमो, भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। तो जो शिव योगेश्वरा ये भवपद्म मुख्या, शिव और ब्रह्मा आदि भी भगवान की कथाओं को कभी भी पूरी तरह से बखान नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी भगवान की कथाओं को श्रवण करके पूरी तरह से तृप्त नहीं होता, मतलब जितना जितना श्रवण करता है उतना उतना भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा होती है, स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए हमारी तृप्ति नहीं हुई है, आपने हमें जो बताया है हमारी इच्छा हो रही है कि हम और भी श्रवण करें, क्योंकि जितना जितना श्रवण कर रहे हैं हमारी तृष्णा बढ़ रही है, हमारी प्यास बढ़ रही है। इसलिए तन्नो भवान्वे भगवत प्रधानो महत् तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन् तन्नो भवान् मय भगवत प्रदानो। क्योंकि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो फिर हमें महत्तम एकांत परायण से, आप तो सदैव भगवान के ही आश्रय हैं, आप सदैव भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हरे रुदारम चरितम विशुद्धम, आप हमें भगवान के उदार चरित्र के विषय में बताइए। हम भगवान के चरित्र के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, शुश्रूषताम हम सुनने के लिए आतुर हैं, सुनने के इच्छुक हैं, शुश्रूषताम नो वितनोति विद्वन, आप कृपा कीजिए हम पर हे प्रभु, हमारे इस मृत्यमान शरीर के प्राण जो है वो अब भगवान की कथाओं में अटके हुए हैं, हमें और कुछ नहीं करना, हमें और कुछ नहीं श्रवण करना, हमें केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। इसी श्रृंखला को आगे आते हुए आज हम श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें ऋषिगण सूत गोस्वामी से कहते हैं सवै महाभागवत परीक्षित ये नापवैगाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वैया स
सखी शब्द दीना बीजी खगेन्द ध्वज पाद मूलम सवै महाभागवत परीक्षित यीनापवर्गाख्यमद ब्रबुद्धि ज्ञानेन वैया सखी शब्दितेना बीजी खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम् स वै महाभागवत परीक्षित यीनापवर्गाख्यमद ब्रबुद्धि ज्ञानेन वैया सखी शब्दितेन बीजी खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम्।
शब्दार्थ स वै मतलब वही वै मना निश्चित रूप से महाभागवत परीक्षित। यहाँ पर परीक्षित महाराज को महाभागवत कहा गया यानी उच्च कोटि का भक्त। वैसे तो भक्तों की कोई कसौटी नहीं होती है, भक्त भक्त होता है, लेकिन फिर भी भक्तों की तीन श्रेणियां बताई गई हैं शास्त्र में। एक कनिष्ठ भक्त होता है, एक उत्तम भक्त होता है, मध्यम भक्त होता है। तो इस तरह से जो उत्तम भक्त होता है यानी एक प्राकृत होता है, फिर मध्यम होता है, और दूसरा जो महाभागवत होता है उत्तम भक्त, उसको कहा गया है यहाँ पर सवै महाभागवत परीक्षित। तो महाभागवत कैसा भक्त होता है यानी वो हर एक वस्तु का संबंध भगवान के साथ देखता है। उसी संसार में सब कुछ भगवान की ही शक्ति, भगवान की ही माया, भगवान ही भगवान दिखता है चारों ओर। वो चाहे किसी भी वस्तु को देखता है उसके सामने भक्त और अभक्त का भी कोई अंतर नहीं होता है। हर एक वस्तु में उसे कृष्ण दिखता है। वो होता है उत्तम भक्त जिसको कभी किसी के अंदर कोई दोष नहीं दिखता है, सबके अंदर केवल कृष्ण की कृपा दिख रही होती है, ऐसा होता है महाभक्त महाभागवत भक्त। तो यहाँ पर कहा गया स वै महाभागवत परीक्षित। परीक्षित महाराज ऐसे ही महाभागवत भक्त थे। येनापवर्गाख्यम अदभृत बुद्धि, येनाप इसका मतलब अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला था तो उनकी बुद्धि जो थी वो मोक्ष पर केंद्रित थी। येनापवर्गाख्यम अदभृत बुद्धि यानी उनकी जो बुद्धि थी, अदभ्र का मतलब होता है स्थिर हो, अपवर्गाख्यम यानी मोक्ष के नाम पर उनकी बुद्धि स्थिर थी, और ज्ञानेन वैयासकी शब्द तेनम, वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी ने जब उनको श्रीमद भागवतम का उपदेश दिया, उनके शब्दों के द्वारा उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों के प्रति इतना प्रेम प्राप्त हो गया। बीजी खगेन्द्र ध्वज पाद मूल, वो भगवान जो खगेन्द्र कहते हैं गरुर यानी जितने भी पक्षी हैं उनके राजा खगेन्द्र के जिस भगवान की सेवा करते हैं, पादमूलम यानी पक्षीराज गरुर जिस भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान की कथाओं को श्रवण जब कराया सुखदेव गोस्वामी ने, तो महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, उनके भगवान के चरणों के अंदर प्रीति प्राप्त हुई। तो हम वही कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताई थी, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, येनापवर्गाख्यम अदभृत बुद्धि, उनकी बुद्धि मोक्ष में टिकी हुई थी, वो मुक्ति चाहते थे, और उन्होंने जब भागवत महापुराण का श्रवण किया तो उनको सुखदेव गोस्वामी वैयासकी शब्द देना, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भगवत प्राप्ति हुई। तो हमारी भी इच्छा है, हम भी इस भवबंधन से छूटना चाहते हैं, हम भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें भी वही रस का पान करवाइए जो कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दिए थे। तो भक्तों,
वैसे तो मुक्ति अनेकों प्रकार की होती है। जैसे शास्त्र कहता है कि सायुज्य, सानिध्य, सामीप्य, सारिष्टि, बहुत सारी पांच प्रकार की मुक्तियों के विषय में बताया जाता है। लेकिन वास्तविक मुक्ति वो होती है जो जीव आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करे। क्योंकि जीव का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो वास्तविक मुक्ति वो होती है कि हम भगवान के दास स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करें। तो वो तभी संभव है जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। और भगवान से प्रेम तभी संभव है जब हम भगवान के कार्यकलापों को, भगवान की कथाओं को किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा श्रवण करेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। और अवश्य हमें कृष्ण प्राप्ति होगी यदि हम प्रेम से इन कथाओं को श्रवण करेंगे। तो इसीलिए ऋषिगणों ने यही कहा कि क्योंकि इन कथाओं को श्रवण करके परीक्षित महाराज को कृष्ण प्राप्ति हुई, तो हमें भी कृष्ण प्राप्ति कराने के लिए आप इन कथाओं का रसास्वादन कराइए। अनुवाद देखिए। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं, उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब प्रेम से श्री प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को सुनेंगे। श्री प्रभुपाद जी एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में मतभेद है। अब मोक्ष जो है वो अलग अलग जीव अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अलग अलग मतलब समझता है कि क्या। कुछ लोग क्या होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो सोचते हैं ज्योति में मिल जाना ही मोक्ष है। और कुछ लोग सोचते हैं भगवान के शरण कमलों की सेवा करके भगवत प्राप्ति करना मोक्ष है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी इन दोनों के विषय में बता रहे हैं। जिज्ञासु, ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। दो टाइप के बताए हैं जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनमें से एक निर्विशेषवादी होते हैं और दूसरे भगवान के भक्त होते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। भले ही वो दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, परंतु जो निर्विशेषवादी हैं उनका आकर्षण किसमें होता है? भगवान की शारीरिक कांति, भगवान की शरीर से निकलने वाली जो तेज है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसके अंदर उन निर्विशेषवादियों का आकर्षण होता है। और जो भगवत भक्त होते हैं उनका आकर्षण केवल भगवान की सेवा में होता है। दिव्य रूप की पूजा करते हैं, भगवान का दिव्य स्वरूप, मैं भगवान के चरणों की सेवा करूं, मैं भगवान को प्रेम से श्रृंगार करूं, मैं भगवान को प्रसाद अर्पण करूं, भगवान की सेवा में उनका पूरा भाव होता है जो भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो भगवान की दिव्य कांति जो होती है, निर्विशेष निराकार ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। इसे आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के शरण कमलों की प्राप्ति व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। ऐसे बोला यहाँ पर, ज्ञानी नवया सखी शक्ति तेना। जब वया सखी यानी सुखदेव गोस्वामी ने उनको भगवान की कथाओं का रसपान कराया, तो परीक्षित महाराज को भगवान के शरण कमलों की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे। अब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि शुरू में वो कौन थे? निर्विशेषवादी। और इसका क्या प्रमाण है कि वो निर्विशेषवादी थे? वो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि भागवतम में उनकी स्वयं उक्ति है, ये कोई और नहीं बता रहा है, साक्षात सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में वे कहते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्त
उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदीतवान परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम। में पूर्णतया दृढ़ता पूर्वक निर्गुण में पूर्णतया भगवान के निराकार स्वरूप में आध्यात्म में स्थित था, परंतु उत्तम श्लोक लीलया भगवान के उत्तम श्लोक जो भगवान जो उत्तम श्लोकों के द्वारा जिस भगवान की स्तुति की जाती है उनकी लीला की तरफ जब मैं आकर्षित हुआ तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकर्षित हो गया। गृहीत चेता मेरा हृदय जो है वो आकर्षित कर दिया उन्होंने भगवान की लीलाओं ने। आख्यानम यदीतवान जिनका वर्णन जो है वो बड़े बड़े मुनि जन करते हैं, इसलिए मैंने उन लीलाओं को यदीतवान यानी उन लीलाओं को मैंने पहले अध्ययन किया है और अब मेरा मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में स्थित हो गया है, आकर्षित कर दिया मेरे मुझे उनकी लीलाओं का श्रवण करने से। अब मेरा मन निर्विशेष निर्गुण स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं हुआ है, भगवान के चरण कमलों के प्रति भगवान की कथाओं को श्रवण करने के बाद मेरा मन पूरा पूरा भगवान के प्रेम में आतुर हो गया है। तो ये उन्होंने स्वयं बताया कि पहले में क्या था, आध्यात्मवादी था, निराकारवादी था। और ईश्वर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि भागवतम में उनकी स्वयं उक्ति है, किंतु बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। जो पूरी तरह से भगवान के प्रेम में लगे रहते हैं उन्हें महाभागवत, जिनको पूरा ज्ञान है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है कि हम भगवान के स्वरूप को प्रेम करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये तो अभी तक, कुछ लोग भक्तों को ऐसे बोलते हैं, ये तो अभी तक विग्रह सेवा में लगे रहते हैं, इनको सही तरह से दिव्य ज्ञान नहीं है इसीलिए वो अभी तक विग्रह सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान का पता चलेगा और वो भगवान की विग्रह स्वरूप को छोड़कर भगवान की निराकार ज्योति की उपासना शुरू कर देंगे, बोलेंगे अभी इनको बहुत आगे आना है। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उत्तम बात यहाँ पर उदाहरण से समझाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे हाईएस्ट स्टेज क्या है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त, पूर्ण ज्ञान क्या कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की सेवा करके ही करना ही आत्मा का परम लक्ष्य है। तो इसको क्या बोलते हैं, महाभागवत उच्च कोटि के भक्त होते हैं। अब यहाँ पर भक्तों की तीन श्रेणियां श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृतिक अथवा तृतीय श्रेणी के भक्त जिसको कनिष्ठ भक्त भी कहते हैं, उन भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है। बस वो क्या करते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, पूजा करते हैं मंदिर की, लेकिन भगवान के भक्तों की कोई के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता है। उनको भगवान के दिव्य महानता के विषय में इतना ज्ञान नहीं होता है। वो होते हैं भक्त मंदिर की हद तक, बस पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पर मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को, भगवान के भक्तों को, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते, उनका ज्ञान अधिक होता है। अभी हम देखें यहाँ संसार में बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनका विग्रह सेवा में बहुत बहुत भाव होता है। वो विग्रह सेवा करते हैं भगवान की बहुत ही सावधानी के साथ, लेकिन भगवान के दूसरे भक्तों के विषय में उनको पता नहीं होता है कि कैसे भक्त होते हैं, कैसे उनका आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, उनके विषय में नहीं पता। तो वो कौन से हैं, प्राकृतिक या कनिष्ठ भक्त। और दूसरे उससे आगे बढ़े चढ़े कौन से हैं, वो मध्यम अधिकारी जिनको कहा जाता है। वो कैसे है, वो भगवान के भक्तों को जानते हैं, भगवान के भक्तों की महिमा को जानते हैं। वो ये जानते हैं जब तक भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जब भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए और वो सबको जानते हैं, भगवान के भक्तों को जानते हैं, नव दीक्षितों को जो अभी नए नए भक्त बने उनको, अभक्तों को भी जानते हैं कि ये भले ही वो ढोंग करते रहे लेकिन ये भक्त नहीं है।
तो वो सबको जानते हैं, लेकिन जो महाभागवत होते हैं ना वो सबसे ऊपर होते हैं। उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, हर एक वस्तु को भगवान के साथ संबंधित देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं रखता। अब ये मध्यम से मध्यम क्या, उसको अंतर दिखता है कि ये अभक्त है, ये भक्त है, ये महाभक्त है, सब कोई अंतर दिख रहा होता है ना। लेकिन जो महाभागवत होते हैं उनको सब कुछ भगवान की उपस्थिति हर किसी में देखते हैं, हर किसी में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, उनको किसी में कोई फर्क दिखता नहीं है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो। तो अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही भागवत भक्त थे। तो जो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं जो महाभागवत होते हैं, तो अगर वो अंतर ही नहीं करेंगे कि ये अभक्त है, ये भक्त है, ये महाभक्त है, तो वो प्रचार है ना, प्रचार कार्य में, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ये अभक्त है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, तो जो महाभागवत होते हैं ना वो भी मध्यम स्टेज पर आकर फिर प्रचार करते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से हर एक भक्त को जो है उनके अनुसार शिक्षा दे सकें। लेकिन वास्तव में उनके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं होता है, वो सबको इक्वल समझते हैं, समान स्थिति में जानते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी, वे सबों पर समान दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों की के विषय में क्या कहा जाए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी महाराज परीक्षित के विषय में बता रहे हैं कि उनके अंदर ये दिव्य गुण कैसे आया, वो महाभागवत कैसे बने, क्योंकि उनको सानिध्य प्राप्त हुआ था सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी जी के संपर्क में आने से वो महाभागवत बन गए थे, और वो सबों के साथ समान रूप से दयालु थे, हर किसी को वो समान रूप से देखते थे, किसी के ऊपर उनको कोई घृणा नहीं थी, कि ना किसी से द्वेष था ना घृणा थी। और हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कलयुग को भी क्षमा कर दिया है ना, कली पर भी उन्होंने कृपा की, विशेष दया की और अपने राज्य में उन्हें स्थान दिया, तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष बात बता रहे हैं, निर्विशेषवादी भक्तों से जो भगवान के प्रेममयी शुद्ध भक्त होते हैं उनका स्टेज किस तरह से ऊपर है, यानी एक स्टेप वाइज सीढ़ी की तरह जा रहा है, और जो निर्विशेषवादी भक्त होते हैं वो किस तरह से भक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं, ऐसी अनेकों कथाएं यहाँ संसार शास्त्रों में हमें मिलती हैं। निर्विशेष वाणी जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन उससे ऊपर का स्टेप जो है वो क्या है, भगवान की भक्ति। तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए, लेकिन एक भी भक्त कभी निर्विशेषवादी नहीं बना। इतिहास में कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं आती, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता कि कोई एक भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा करता हो, भगवान की सेवा करता हो और बाद में निराकारवादी बन गया, ऐसा नहीं बताया। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। समझ में आ, ये दो स्टेप हैं। भक्त जिस पर बैठा हुआ है वो ऊपर की सीढ़ी, ऊपर का स्टेप है। निर्विशेषवादी जब अपनी भक्ति में, अपने ज्ञान में परिपूर्ण अवस्था में आ जाता है तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। और आगे श्रीमद् भगवत गीता का अत्यंत ही सुंदर और मेरा प्रिय श्लोक यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वे कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 12.5 में कहा गया है कि क्लेशोधिक तरस्तेषां
अव्यक्ता सत्तचीतसा अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवत् भिरवाप्यते।
अत्यंत सुंदर श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अनुसार सिद्ध कौन है, जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करता है या जो आपकी साकार रूप में उपासना करता है, सिद्ध कौन है, तो भगवान ने बता दिया पहले कि मेरे हिसाब से तो वही सिद्ध है जो मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासदे, जो कंटिन्यूस मेरे साकार स्वरूप की उपासना करता है, श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता, मेरे अनुसार तो वो सबसे बेस्ट है जो मेरी उपासना करता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो निराकारवादी निराकार की उपासना करते हैं, निराकारवादी होते हैं, तो वो भी अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ ये श्लोक अगर किसी निराकारवादी को श्रीमद् भगवद गीता का समझ में आ जाए ना, तो वो फौरन से भगवान की भक्ति स्टार्ट कर दे, यदि थोड़ी सी भी बुद्धि होगी। क्योंकि इसमें भगवान ने साफ साफ कहा है,
क्लेशोधिक तरस्तेषा अधिक,
उसके अंदर बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा उसको, ये भक्ति में कोई स्वाद नहीं है, बहुत कष्ट है। और अव्यक्ता सक्त चेतसा, वह व्यक्ति जिनका चित्त भगवान के अव्यक्त स्वरूप में आकृष्ट है, उनके लिए अधिक कष्ट है। भक्ति मार्ग में भी कष्ट है, चार नियम का पालन करना पड़ता है, 16 माला जप करना पड़ता है, मंगल आरती करनी पड़ती है, संध्या आरती, लेकिन ये कष्ट जो है वो प्रेम में बदल जाते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं, प्रेम का संबंध जोड़ा, तो जिससे हम प्रेम करेंगे उसके लिए यदि हम कुछ सेक्रीफाई कर रहे होते हैं, कुछ कष्ट सहते हैं, तो उसमें भी आनंद है। लेकिन यहाँ बताया अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो प्रेम का सवाल पैदा नहीं होता है। और फिर प्रेम नहीं है तो फिर उसके लिए हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो हमें दुखदायक लगता है, क्योंकि देहवत विभिरवाप्यते, क्योंकि हम शरीर, हमारा अपना शरीर है और शरीर में रहते हैं, तो फिर अव्यक्त का चिंतन करना असंभव हो जाता है। इसलिए अव्यक्त या निर्विशेष भगवान के स्वरूप की उपासना करना जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट प्रदक है। इसी बात को श्रीमद् प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। वे कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी 12.5 में कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की उपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता की। वास्तव में भगवत भक्ति प्राप्त करने की यही एक विधि है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा हम भगवान के इन लीलाओं का श्रवण करें। जिस तरह महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इन लीलाओं को श्रवण करके भक्ति प्राप्त हुई, वही इच्छा कर रहे हैं ये नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि। वो सुद गोस्वामी से कहते हैं हमें भी सुनाइए, ताकि हमारे हृदय में भी कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। तो श्रील रूपा जी कहते हैं सिद्धि की ये व्यवस्था अपवर्ग या मोक्ष अवस्था कहलाती है। ये मोक्ष अवस्था है अपवर्ग, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का मतलब होता है हम अपवर्ग को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें, तो इसको अपवर्ग कहा जाता है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। सरल ज्ञान क्या है मोक्ष संबंधी, कि हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं और निराकार ज्योति के अंदर लीन हो जाएं, तो श्रील प्रभुपाद जी भौतिक है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बताते हैं रियल मोक्ष क्या होता है। मोक्ष तो भवबंधन से वास्तविक मुक्ति है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है। अभी वास्तविक मोक्ष के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था है। हम भावबंधन से मुक्त होकर निराकार ज्योति में लीन हो भी जाएं, तो भी हम आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप है प्रेम करना। निराकार के साथ हम कैसे प्रेम का संबंध स्थापित करेंगे? इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक मोक्ष क्या है कि वो भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त करें। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से प्राप्त होती है। जब हमें भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो भौतिक आसक्ति से हमारा वैराग्य हो जाता है, क्योंकि भक्ति के दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। तो जैसे ही हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः हमारे पास आ जाते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं श्रीमद् भागवतम 1.2.12 क्या बताया गया, उसने कहा तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्ता श्रुतिगृहा गृहीतया। कि भक्ति जो है वो कैसे प्राप्त होगी? श्रुति गृहीतया, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो श्रवण करने से। तत् श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त है, मुनियों को ये ज्ञान और वैराग्य केवल भगवान के विषय में श्रवण करने से ही प्राप्त हुए। ज्ञान तथा वैराग्य से गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम्, वो भगवान के उस स्वरूप को अपने हृदय में अनुभूति करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही सरल उपाय है श्रुति गृहीतया, भगवान को श्रवण करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। अगर हम भी परीक्षित महाराज की तरह, जिस तरह परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, ऋषिगण सूत गोस्वामी से सुन रहे और हम सब श्री प्रभुपाद जी के साथ सुन रहे, तो सेम लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी भगवान के चरणों में प्रीति। इसीलिए ऋषिगण यहाँ सूत गोस्वामी से आगे भी यही प्रार्थना करते हैं, श्लोक नंबर 17 कृपया श्रवण कीजिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। वे कहते हैं तन्ना परम पुण्यमासौ वृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ता चरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवता विरामम् तन्न परम पुण्यमासौ वृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ता चरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवता विरामम् तन्न परम पुण्यमासौ वृतार्थम् आख्यानमत्यद् भूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवता विरामम् तन्नः। तन्नः मतलब वही हमें भी सुनाई है जो उन्होंने सुनी थी। तन्नः परम पुण्यम असम पुण्य असंवृतार्थम, यानी यथा रूप में एज इट इज हमें बताइए असंवृतम। वास्तव में भक्तों, जब तक कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वो यथा रूप में नहीं बताई जाती, एज इट इज नहीं बताई जाती। हम देखते हैं कुछ वक्ता होते हैं जो कथा को बहुत मिलावट करके बता देते हैं, लेकिन ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है कि जो श्लोकाज हैं, जो बातें जो शास्त्र में लिखी हुई हैं, उनको एज इट इज हमें बताना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिश्रित नहीं करना चाहिए। इसी को हमें सरल करके उदाहरण लेके हम समझा सकते हैं, परंतु वो होना उसका जो रियल एसेंस है, जो शब्दों का रियल, जैसे श्लोकों का जो रियल एसेंस है, वो कभी भी है ना चेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं परीक्षित, सॉरी ऋषिगण सूत गोस्वामी को कहते हैं हमें कुछ मिलावट वाला नहीं चाहिए, तन्ना परम पुण्यम संवृतार्थम, वो हमें एज इट सुनाइए, यथारूप में सुनाइए। आख्यानम अत्यंत भूत योग अनिष्ठम, आप बताइए वो वार्ता अति अद्भुतम, ये बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। योग अनिष्ठम, ये भक्ति योग से परिपूर्ण बातें, भगवान के प्रेम से भरी हुई, भगवान के प्रेम में लिपटी हुई ये जो वार्ताएं हैं वो आप हमें बताइए। आख्यायनंता चरितोपपन्नम, ये भगवान की जो कार्यकलाप है वो बताइए हमें। अनंत आचरित, भगवान की अनंत कथाएं हैं, उनकी कार्यकलाप है, उनको आप वर्णन कीजिए, पूर्ण रूप से हमें बताइए। पारीक्षितम भागवताभिरामम, पारीक्षितम महाराज परीक्षित से जो बताए, जो उनको जो बताई गई थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, भागवताभिरामम शुद्ध भक्तों के द्वारा, विशेषतया जो शुद्ध भक्तों को बहुत प्रिय लगती है, अभिरामम वो विशेष रूप से भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उन्हीं को भगवान की कथाएं प्रिय लगती है। हम देखते हैं कभी ऐसा होता है, कार्तिक का महीना होता है, मंदिर में कथा चल रही होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी किया और यशोदा मैया लकुटी लेकर उनके पीछे पीछे भागती हैं, भगवान भाग रहे हैं, त्रिलोकी के नाथ यशोदा मैया की छड़ी से डर रहे हैं और यशोदा मैया बोल रही है कन्हैया मैं आज तुझे बांध के छोड़ूंगी। तो जो भक्तजन होते हैं वो कितनी भी दफा इस कथा को श्रवण करते हैं, नेत्रों से अश्रु धाराएं नहीं रुकती, वो कंटिन्यूस प्रेम से श्रवण, जितना शुद्ध भक्त सुनाएगा ना उतना ही भक्तों को हृदय से आह्लाद होता है। लेकिन जो अभक्तों के वो क्या बोलेंगे, ये हर दफा यही वाली स्टोरी क्यों बताते हैं, हर जभी तभी आते हैं तो यही वाला सब, तो मतलब उनको इतना, अभक्तों को भगवान की कथा में उतना रस नहीं आता। लेकिन वास्तव में आत्मा भगवान का दिव्य सेवक है। तो ये अपराध कैसे है, क्योंकि हम इस संसार में आ गए हैं तो रिगुण अवस्था है, हमारी अवस्था ऐसी हो गई है कि हम भगवान की कथाओं का रियल स्वाद नहीं ले पाते। तो जैसे जैसे हम कथाओं को श्रवण करते जाते हैं हृदय पवित्र होता जाता है और हृदय के अंदर शुद्ध भक्ति का बीज जो है वो अंकुरित होता है, तो हमें भगवान की कथाओं में उतना उतना आस्वादन। पहले जो अभक्त होते वो क्या बोलते हैं कि भाई आधे घंटे में कथा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, इतना टाइम कौन बैठेगा, और फिर जब सुनते सुनते चार घंटे बीत जाते हैं तभी भी याद नहीं आता कि हमें ना अभी कथा, ऐसा लगता है कथा और भी चलनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं भागवत विरामम, जो विशेष भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति से परिपूर्ण इन कथाओं का आस्वादन करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तो कृपया आप भी हमें उन्हीं कथाओं का आस्वादन कराइए। अनुवाद, अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाइए क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा श्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया और वे भक्ति योग के पूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। श्री प्रभुपाद देखिए, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो महाराज परीक्षित को सुनाया गया और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से परिपूर्ण है, अतः यह भक्ति योग का विज्ञान है। ये जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भक्ति योग का विज्ञान बढ़ा हुआ है कि किस तरह से हम भगवान के प्रेम में अपने आप को भर दें, मतलब हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो प्रेममय हो जाता है जब हम भगवान की इन दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं। अतएव यह भक्ति योग का विज्ञान है। इस प्रकार यह परम है क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवत भक्ति में विशेष रूप से समृद्ध है। इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण धर्म है और उसके अतिरिक्त जो है वो भगवत भक्तों की विशेषतया भक्ति में विशेष रूप से समृद्ध है। भागवताभिरामम, विशेषतः जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो इसको श्रवण करके अपने हृदय में भगवान के प्रेम को क्षण प्रतिक्षण बढ़ाते हैं, उन्नति होती है भगवत प्रेम में। तो ऋषि गणों ने यहाँ पर बहुत बहुत इच्छा प्रकट की है, उत्सुकता प्रकट की है कि हमें कृपा करके उन कथाओं को श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। हम भगवान से प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, हृदय में भगवान के प्रेम को उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें इन कथाओं को श्रवण कराइए। तो यहाँ तक ऋषियों की प्रार्थनाएं समाप्त हुई और कल से हम सूत गोस्वामी के उत्तर को सुनेंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, हृदय से कीजिएगा कि मैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को डेली आप लोगों को श्रवण करा सकूं, मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। जब भी भागवतम महापुराण को श्रवण कीजिए तो एक बार भगवान से हृदय से कहिए कि हम वो मुझ पर कृपा करें कि मैं ये सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत आभार।